केशव सिंघानिया को जब से पता चला था कि इशिका राधिका और उनकी बेटी है, तब से वो इशिका से मिलने के लिए कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो रहे थे। केशव जैसे सख्त इंसान जो कभी किसी को अपने इमोशंस शो नहीं करते थे, आज वो इशिका के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कुछ हद तक सिंघानिया मेंशन का इंटीरियर तक चेंज करवा दिया था ताकि इशिका जब वहां आए तो उसकी पुरानी बुरी यादें ताज़ा ना हों। केशव के साथ अरमान भी वहीं पर आया हुआ था। वो चाहता था कि केशव और राधिका के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाए। ये सोचकर उसने केशव से बिना पूछे राधिका को भी इन्वाइट कर लिया था। जहां एक तरफ राजवंश एम्पायर से इशिका और अभिमन्यु सिंघानिया मेंशन जाने के लिए निकल गए थे, तो वहीं दूसरी तरफ राधिका भी इस डिनर में जाने के लिए तैयार थी। इशिका और अभिमन्यु गाड़ी में थे। इशिका भले ही जाहिर ना कर रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी केशव से मिलने के लिए बेचैन हो रही थी। इशिका ने अभिमन्यु की तरफ देखकर पूछा, हम उनसे पहली बार मिलने जा रहे हैं, मैं अपने डैड के तौर पर उनसे पहली बार मिलने जा रही हूँ, क्या मुझे उनके लिए कुछ लेकर जाना चाहिए? ऐसे खाली हाथ जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल, मैंने गिफ्ट तैयार करवाकर पहले ही रखवा दिए थे, अभिमन्यु ने मुस्कुराकर जवाब दिया। क्या मुझे माँ और उनके रिश्ते के बारे में बात करनी चाहिए? वो माँ से नाराज तो नहीं है ना कि उन्होंने इतने सालों तक उनसे सच छुपाया? इशिका ने आगे कहा। एक बार फिर अपने मूड स्विंग्स के चलते इशिका बेचैन हो रही थी। अभिमन्यु ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और सहलाते हुए कहा, जो भी होगा देखा जाएगा, पर तुम इस तरह परेशान होना बंद करोगी? हो क्या क्या है तुम्हें? ऐसा लगता है कि तुम वो इशिका हो ही नहीं जो मुझे मिली थी। इतनी परेशानी में भी तुम्हारे चेहरे पर एक कामनेस रहती थी। तुम्हें तो लोगों की सोच तक से फर्क नहीं पड़ता था। अब तुम दिन रात यही सोचकर परेशान रहती हो कि आगे क्या होगा, कोई क्या करेगा। अभिमन्यु सच कह रहा था। पहले इशिका को लगता था कि ये उसकी प्रेगनेंसी के चलते हो रहा है, लेकिन उसकी प्रेगनेंसी को तो अभी 2 महीने भी पूरे नहीं हुए थे। उसने कुछ ज़रूरी टेस्ट करवाए थे, उसमें सारी चीज़ें नॉर्मल थीं, फिर भी उसके दिल में न जाने क्यों ये बेचैनी घर करने लगी थी। इशिका ने अभिमन्यु की बात का जवाब नहीं दिया। अभिमन्यु इशिका के करीब खिसका और उसका सिर अपने कंधे पर रख दिया था। अभिमन्यु ने इशिका के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए प्यार से समझाते हुए कहा, दिल में कुछ चल रहा है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। देखो, मुझे बहुत बुरा लगता है तुम्हें इस तरह देखकर। क्या बिजनेस को लेकर परेशान हो तुम? इशिका ने अपनी नज़रें उठाकर अभिमन्यु की तरफ देखा और ना में सिर हिला दिया था। फिर वो कुछ पल रुककर रूंधे गले के साथ बोली, बस डर लग रहा है अभिमन्यु। अभिमन्यु के लिए ये नया था। इशिका डर रही थी, ऊपर से उसने उसे कुछ शेयर भी नहीं किया था। अभिमन्यु तुरंत इशिका से अलग हुआ और उसका चेहरा अपने हाथों में भर लिया था। वो इशिका की आंखों में देखते हुए बोला, और मेरे रहते तुम्हें किस बात का डर लग रहा है? किसी ने कुछ कहा? देखो, मिस्टर सिंघानिया की वजह से परेशान हो तो अभी हम यूटर्न ले लेंगे। हमारे बच्चे को लेकर डर लग रहा है अभिमन्यु, इशिका बोली। उसकी आंखें नम होने लगी थी। उसने भारी आवाज में कहा, सब ठीक होगा ना? हमारे बहुत दुश्मन हैं। जब मैं पैदा हुई थी तब मुझे बदल दिया गया था। कहीं माँ की तरह मेरी बेहोशी का फायदा उठाकर मेरे बच्चे को कोई बदल देगा और उसके साथ भी वही होगा जो मेरे साथ हुआ था, तो मैं क्या करूँगी? इशिका के दिल का डर जायज था। आयशा उसके खिलाफ यही साजिश कर रही थी। भले ही आयशा चली गई हो, लेकिन राजवंश फैमिली के लोग अभी भी वहीं पर थे। अगर ऐसा है तो तुम्हारी डिलीवरी से लेकर तुम्हारे होश में आने तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। किसी अनजान शख्स को हमारे आसपास भी नहीं भटकने दूंगा। सिक्योरिटी इतनी टाइट होगी कि तुम्हारे आसपास कोई अनजान शख्स नहीं होगा, अभिमन्यु बोला। इशिका ने उसकी बात पर सहमति जताई। बातों ही बातों में उनका सफर कट गया था। वे सिंघानिया मेंशन पहुंच गए थे। इस वक्त शाम के लगभग 7 बज रहे थे, इस वजह से अंधेरा नहीं हुआ था। जैसे ही इशिका और अभिमन्यु ने अंदर कदम रखा तो वो दोनों ही हैरान रह गए। बाहर के गार्डन एरिया में ज्यादातर नए प्लांट्स लगा दिए गए थे। वहां की बेंच वगैरह बदल दी गई थी और कुछ नई वॉल पेंटिंग्स बनवाई गई थी। आगे जाने पर बाकी चीजें भी चेंज थी। बाहर के अरेंजमेंट को देखकर अभिमन्यु ने इशिका से कहा, लगता है मिस्टर सिंघानिया तुम्हें लेकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो रहे हैं। इसे देखकर ही समझ जाओ कि उनके दिल में तुम्हारे लिए बहुत प्यार है। इशिका ने उसकी बात पर सिर हिलाया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। किसी ने भी उसके लिए इतना अरेंजमेंट नहीं किया था। हाँ, जब राधिका को पता चला था कि इशिका उसकी बेटी है तो उसने आयशा के कमरों को इशिका के हिसाब से एडजस्ट करवाया था, पर कभी इशिका को उसमें रहने का मौका ही नहीं मिला। कमरा तैयार हुआ ही नहीं, उससे पहले ही उनकी जिंदगी में साजिशों ने दस्तक दे दी थी। इशिका और अभिमन्यु बाहर ही थे कि तभी केशव अरमान के साथ उनके पास आए। वो इशिका को गौर से देख रहे थे। वो बिल्कुल उनकी माँ की तरह लगती थी। एक पल के लिए केशव की आंखें नम होने लगी। उन्होंने बहुत कुछ मिस किया था, अपनी बेटी का बचपन, उसका पहला कदम, उसका पहला शब्द, इन सब का एहसास उन्हें अब हो रहा था। मिस्टर सिंघानिया इशिका के बिल्कुल पास आए और धीमी आवाज में कहा, याद है हम एक बार बहस कर रहे थे कि किसकी माँ दिखने में ज्यादा अच्छी है, तो अभी भी मैं यही कहूंगा कि मेरी माँ ज्यादा अच्छी है, क्योंकि तुम बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखती हो। मेरी बेटी दुनिया में सबसे बेस्ट है। मिस्टर सिंघानिया के होठों पर एक प्राउड स्माइल थी। इशिका भी आगे बढ़कर उन्हें गले लगाना चाहती थी। उसने एक नज़र अभिमन्यु की तरफ देखा तो उसने पलकें झुकाकर इशिका को पहल करने का इशारा किया। इशिका जल्दी से आगे बढ़कर उन्हें गले लग गई थी। इसी के साथ केशव की आंखों में बंद आंसू बाहर बह निकले थे। मुश्किल से ही किसी ने उन्हें रोते हुए देखा होगा। अभिमन्यु और अरमान दोनों ही उनके आंसुओं को देखकर हैरान थे। मुझे माफ कर दो बेटा, जो मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफों का सामना करना पड़ा। सच बता रहा हूँ, अगर पहले पता होता कि मेरी कोई बेटी भी है तो दुख का एक साया भी तुम पर नहीं पड़ने देता। मजाल है जो कोई तुम्हें हॉस्पिटल में बदल देता, मैं उस शख्स का नामो निशान मिटा देता, केशव ने इमोशनल होकर कहा। उनकी बातें एक बार फिर इशिका को शांत करने पर मजबूर कर रही थी। वो जल्दी से केशव से अलग हुई और वहीं खड़ी होकर बोली, आयशा इस दुनिया में नहीं रही है क्या आपने? इशिका बोलते हुए रुक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस मौके पर उसका सवाल सही है या नहीं। नहीं, मैं उसे इतनी आसान मौत नहीं देता, ये काम मेरा नहीं है, लेकिन वो लड़की जिंदा होती तो मैं उसे छोड़ता नहीं, केशव ने सख्त आवाज में कहा। उनकी बात सुनकर अरमान बोला, चाचू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इशिका पिछली बार उसे पागलखाने भेजने का आइडिया भी मेरा ही था, और यकीन करो मैं उसकी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखता था। न जाने कैसे उर्वशी राजवंश वहां पर पहुंची और उसने आयशा की देखभाल के लिए एक नर्स थी छोड़ दी थी, उसी के जरिए वो बाहर निकली थी। खैर उसके बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है, इशिका ने जवाब दिया। फिर वो केशव की तरफ देखकर बोली, उस दिन जब आपको रेस्टोरेंट में देखा था तो एक पल के लिए दिल में यही ख्याल आया था कि अगर मेरे डैड होते तो वो बिल्कुल आप ही की तरह होते। थैंक यू सो मच मिस्टर सिंघानिया मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए। तुम अभी भी मुझे मिस्टर सिंघानिया कह रही हो, क्या तुम्हें कोई डाउट है कि मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ? तुम चाहो तो डीएनए करवा सकती हो, केशव ने सवालिया लहजे में कहा। इशिका के मुंह से मिस्टर सिंघानिया सुनकर उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। बिल्कुल नहीं, मेरी माँ झूठ बोल ही नहीं सकती, उन्होंने सुबह ही मुझे सब बता दिया था, इशिका ने जवाब दिया।
राधिका का जिक्र होने पर केशव के चेहरे के भाव सर्द होने लगे थे। उन्होंने इशिका के सामने जाहिर नहीं किया, लेकिन गुस्से में उनकी मुट्ठियां कस गई थीं। और ये कोई और नोटिस करे या ना करे, अभिमन्यु ने ध्यान दे दिया था। अभिमन्यु ने उनकी तरफ देखकर अपने मन में कहा, अरे नहीं मिस्टर सिंघानिया, गलती से भी इशिका के सामने राधिका के लिए अपनी नफरत जाहिर ना कर दे, वरना वो गुस्सा हो जाएगी। अभिमन्यु उनसे बात करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन केशव ने उसे हाथ का इशारा करके वहीं रोकते हुए कहा, मुझे लगा तुम पेपर साइन करके अपने साथ लेकर आए होगे अभिमन्यु राजवंश, अब तुम्हारा घमंड कहाँ गया जब तुम मेरी बेटी से शादी नहीं करना चाहते थे? देख लो किस्मत का खेल, आज तुम मेरी ही बेटी के हस्बैंड हो, लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं रहोगे। वो पुरानी बात हो गई मिस्टर सिंघानिया, अभिमन्यु ने वहीं खड़े होकर कहा। कुछ भी पुराना नहीं हुआ है, सबका हिसाब होगा, केशव सख्ती से बोले। ठीक है फिर उसका हिसाब भी कर लेते हैं। जब अस्पताल में आप मेरी वाइफ को मारने की साजिश कर रहे थे, वो तो अच्छा हुआ कि सच सामने आ गया, वरना आप और अरमान मिलकर उसे पागलखाने में डाल देते। उसके लिए आप किसे सजा देने वाले हैं? आपको याद है ना, वो मैं ही था जो इशिका को हर तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा था, अभिमन्यु ने भी पूरे एटीट्यूड से जवाब दिया। उनकी इस तरह की बहस देखकर इशिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अरमान ने उसके मुस्कुराहट को नोटिस करते हुए धीमी आवाज में कहा, अरे अभी तो इनके बीच की बहसबाजी शुरू हुई है, कभी तुमने देखा नहीं, दोनों बिल्कुल बच्चों की तरह लड़ते हैं। मैं देख रही हूँ और एंजॉय भी कर रही हूँ, इशिका हल्का सा हंसकर बोली। एक पल ऐसा था जब इशिका सिंघानिया मेंशन में आती थी तो उसका दिल घबराने लगता था, लेकिन आज उसे लग रहा था कि वो सच में अपने घर लौट आई है। उसके डैड वहां थे, इशिका की नजरें प्यार से केशव की तरफ देख रही थीं। सब कुछ बिल्कुल अच्छे से चल रहा था, लेकिन तब तक ही जब तक राधिका वहां नहीं पहुंची थी। केशव जो अब तक अपने गुस्से को काबू किए हुए थे, जब उन्होंने राधिका को गाड़ी से बाहर निकलते देखा तो अब उनका गुस्सा बेकाबू हो गया था। राधिका ने अब तक उनका प्यार ही देखा था, अब बारी थी उनकी नफरत देखने की। फिलहाल के लिए इतना ही। हाँ मैं पार्ट को नहीं दिखा रही हूँ फिलहाल, क्योंकि उसका चैप्टर पूरी तरह शुरू करने से पहले पुराने चैप्टर क्लोज करना जरूरी है। उसमें सबसे ज्यादा जरूरी इशिका और केशव के बीच के रिश्ते की सच्चाई सामने आना था, जो कि हो गया है। थोड़ी बहुत इधर उधर की चीज फैली हुई है, उसे ठीक करने के बाद पार्थ का रोल पूरी तरह से दिखाई देगा। बाकी चैप्टर लाइट रख रही हूँ ताकि आपको भी इनके हैप्पी मोमेंट्स एंजॉय करने का मौका मिले।